सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
पिछली कक्षा में हम लोगों ने सप्तम अध्याय शुरू किया था। भगवान कहते हैं अगर आपके पास में ये तीन चीजें हैं तो मैं आपको अपने बारे में ज्ञान दूंगा। क्या तीन चाहिए? मैया सक्त मनः पार्थ, आपका मन जो है भगवान के अंदर पूरा होना चाहिए। अच्छा, योगम युंजन, आप प्रयास भी कर रहे हो भगवान के बारे में जानने का प्रयास या समाधि अभ्यास, ये भी आप कर रहे हो। मदाश्रय, तीसरा गुण बताया भगवान ने, मदाश्रय, आपको हमारा आश्रय लेना है। आश्रय लेना मतलब बुद्धि से आपको ये निश्चित करना है कि भगवान ही आपके परम हैं। तो बुद्धि से आप ठीक कर लीजिए मदाश्रय कि ये भगवान हमारे परम हैं, यही मेरा लक्ष्य है, और उनके पाने के लिए आप चेष्टा कर रहे हैं और उनका आपका मन जो है उनमें लगा हुआ है। तीन चीजें भगवान ने कहा, मन, बुद्धि और आपकी चेष्टा होनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं असंसयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु, बिना डाउट के बिना किसी संशय के, और भगवान को पूरा समझ लेंगे आप, ये नहीं कि भगवान आपको थोड़ा सा कमती बताएंगे या अपने बारे में पूरा नहीं बताएंगे। समग्रम भगवान कहते हैं मैं अपने बारे में पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु, कैसे इसको जान पाओगे, तो मुझको कैसे जानना होगा, बोले मेरे विभूति बल ऐश्वर्य जो भी जो हमारे गुण हैं वो सारे के सारे आपको हम बताएंगे, सारे के सारे गुण हम बताएंगे, और देखेंगे आप कि भगवान निसंदेह ऐसे हैं, ये आपका निश्चित रूप से आपको पता लग जाएगा। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सभिज्ञानम इदम बच्छ्याम अशेषता, बोले मैं ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? तो पहला जो है ज्ञान जो है वो एक तो जनरल होता है, जनरल ज्ञान, दूसरा परोक्ष होता है, ये परोक्ष होता है मतलब आपकी अभी अनुभूति नहीं हुई है, आपकी अपनी अनुभूति नहीं हुई है, परोक्ष है, और तीसरा जो है ये थ्योरेटिकल है, लगता है थ्योरी है सारा। व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान वो प्रैक्टिकल है, और दूसरा अपरोक्ष अनुभूति है, ज्ञान में परोक्ष ज्ञान है और विज्ञान में अपरोक्ष अनुभूति है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान और विज्ञान सहित मैं आपको बताऊंगा अशेषता, उसमें कुछ छुपा के नहीं रखूंगा, पूरा का पूरा ज्ञान आपको दूंगा। यद ज्ञात्वा नेहम नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, उसके बाद यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद में भगवान जो बताएंगे उसको जानने के बाद में, न इह भूय अन्यत ज्ञातव्यम, बोले फिर यहाँ पर और कुछ जानने का नहीं है, और कुछ पुरुषार्थ करके इससे बढ़िया या उससे ऊपर का कोई चीज जानने का और नहीं बचेगा। अवशिष्यते, कुछ भी नहीं बचेगा। मगर वो कहते हैं कि ज्ञान बहुत दुर्लभ है, ज्ञान बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसके बाद भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों लोगों के अंदर में। कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक जो है इसको पाने के लिए चेष्टा करता है, हजारों हजारों लोगों में कोई एक पाने की चेष्टा करता है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है एक नंबर, दूसरा मनुष्य जन्म पाने के बाद भी कोई इसके पाने के लिए चेष्टा करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, और ये जितने भी जो सीकर हैं, जो साधक हैं, जो जानने वाले हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो यत्न करने वाले हैं, उन सब में भी ऐसा नहीं है कि सबको सिद्धि मिल जाए, सबको सफलता मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी को सफलता मिलती है। तब आप सोच सकते हैं कि एक ज्ञानी कितने लोग होते हैं, सब लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, कोई बिरला कोई आपको नजर आ जाएगा एक ज्ञानी। इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोता को सम्मुख करके भगवान अब अपने बारे में बताने जा रहे हैं, भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं कि मैं आपको ज्ञान और विज्ञान सहित बताऊंगा, ताकि हम लोग सब जो है अट्रैक्ट हो जाएं उनकी तरफ में, आकर्षित हो जाएं। भगवान बताने जा रहे हैं अपने बारे में। अच्छा, आज हम चौथा श्लोक देखेंगे।
भूमिरापो नलो वायुः,
भूमिरापो नलो वायुः,
खम्मनो बुद्धिरेव च,
खम्मनो बुद्धिरेव च,
अहंकार इति यं मे,
अहंकार इति यं मे,
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा,
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा,
भूमिरापो नलो वायुः, खम्मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
भगवान अपनी स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं। अगले 25 श्लोक में भगवान अपना स्वरूप बताएंगे। तो पहला जो है वो भगवान बताते हैं कि मेरी एक अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। तो वो अपरा प्रकृति क्या है, इसकी चर्चा इस श्लोक में करते हैं। भूमि, आपह, अनलह, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीजों का नाम भगवान ने लिया, 8 चीजों का लिया है। और किस क्रम से लिया है, तो भगवान स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। देखो क्रम को ऊपर में विचार करना चाहिए, कैसे बता रहे हैं, बताने की पद्धति क्या होती, या तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आओ या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओ। तो भूमि क्या है, सबसे स्थूल है, उससे सूक्ष्म क्या है, उससे सूक्ष्म आप है, पानी है, उससे सूक्ष्म क्या है, अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म क्या है, वायु है, वायु से सूक्ष्म क्या है, आकाश है, आकाश से सूक्ष्म क्या है, मन है। देखो मन के अंदर आकाश को हम देखते हैं, पूरे आकाश को हम मन के अंदर देख लेते हैं, इसलिए मन जो है आकाश से भी सूक्ष्म है। अच्छा, मन से सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है। क्यों, क्योंकि मन जो है केवल जिस जगह पर आगे जा चुका है वहीं जा पाता है, बुद्धि जो है उसके भी आगे जा पाती है, इसलिए बुद्धि है, मन और बुद्धि। एवं अहंकार, अहंकार के से ही तन्मात्रा आती है, तन्मात्रा से ही हमारे जो है मन और बुद्धि बनते हैं। तो अहंकार जो है मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म है। देखो तो भगवान स्थूल से लेके सूक्ष्म की तरफ में यहां पर जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो 8 जो चीजें हैं, 8 प्रकार के विभाजित जो है, ये मेरी प्रकृति है, ये माया है, माया से हमने इसको बनाया है। अच्छा, ये कैसी हैं, तो अभी जो बता रहे हैं, जो अभी हम भूमि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये अभी स्थूल देख रहे हैं। यहां पर जो चर्चा हो रही है वो चर्चा है आपकी सूक्ष्म की, सूक्ष्म है ये, एक सूक्ष्म पंचमहाभूत होता है, एक स्थूल पंचमहाभूत होता है। स्थूल पंचमहाभूत को हम देख पाते हैं, सूक्ष्म पंचमहाभूत को हम देख नहीं पाते हैं, अपने इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए उसको तन्मात्रा कहते हैं, तत्मात्र कहते हैं। अच्छा, तो मन बुद्धि अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूत को लेकर भगवान ने कहा कि ये हमारी अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो यहां पर तो भगवान ने केवल आठ ही बताया है। देखो, आठ संख्या जो है वो प्रकृति की है, संख्या नौ जो है वो किसके लिए हम व्यवहार करते हैं, ब्रह्म के लिए, कंप्लीट है वो, नौ से बढ़ के कुछ नहीं है, नौ के साथ में कुछ जुड़ जाने से तब वो नौ की संख्या और बढ़ेगी, नहीं तो अपने आप में नौ कंप्लीट है, आठ जो है प्रकृति का है। भगवान कृष्ण की 16,008 रानियां थी, 16,000 तो वो एक साथ उनको शादी करनी पड़ी, आठ मुख्य रानियां थी, आठ मतलब ये प्रकृति के रूप है। देखो, प्रकृति अष्टधा कुछ महात्मा कहते हैं, वो आठ रानियां मतलब प्रकृति है। मगर हम लोगों ने तत्वबोध में तो ऐसा पढ़ा है कि 24 होते हैं, भगवान आठ कहते हैं, तो कौन सा सही है। तत्वबोध में शंकराचार्य जी 24 तत्व की बात करते हैं, यहाँ पर आठ ही बता रहे हैं, क्या बात हुई। तो तत्वबोध ने बताया, अथ चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः, तो वो 24 क्या हैं, तो हम लोगों ने देखा है पांच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, पंच प्राण होते हैं, पंच महाभूत होते हैं, हो गए ना 20, और अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिला के 24 हो गए। पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच महाभूत, 20 हो गए, और अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 हुए। तो आप कैसे बतलाते हैं कि यहां पर आठ ही हैं, तो भगवान 13वें अध्याय में जाकर हम लोग को और विस्तार से बताएंगे कि वही 24 बताएंगे। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियानि 10 एकम च पंच इंद्रिय गोचरा। इसको जब हम देखेंगे तब तो आपको गिना देंगे कि यहां 24 आ गए। तो भगवान अभी इंगित कर रहे हैं कि आठ, ये आठ इज इक्विवेलेंट टू 24। ये 24 कैसे हुए, 13वें अध्याय में आपको ये मिलेगा, 5वें श्लोक के अंदर ये डिटेल आपको मिल जाएगा, जहां आपको 24 की संख्या मिल जाएगी। तो महाभूतानी क्या है, पांच महाभूत हैं, अहंकार, देखो अहंकार भी हमको यहां मिला, बुद्धि भी मिला, अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, या इसको आप तमोगुण कह सकते हैं, इंद्रियानी 10, इंद्रियानी 10 मतलब पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, एकम, एकम मतलब मन हो गया, पंच इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा मतलब ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पर 24 की संख्या आ जाती है। अब हमको ये समझना है कि ये जो है अहंकार कहाँ से आया। तो भागवत की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले महत तत्व आता है। आपने नाम सुना है महत तत्व का, महत तत्व क्या है, जब अव्यक्त प्रकृति से प्रथम प्रकृति व्यक्त होती है, जब प्रलय काल में सारी प्रकृति अव्यक्त रहती है, अनमैनिफेस्ट रहती है, उस अनमैनिफेस्ट से जब मैनिफेस्ट, जब व्यक्त होती है, तो सबसे पहले जो है महत तत्व आता है। महत तत्व को कैसे आप समझेंगे, देखो जब अव्यक्त रूप में प्रकृति रहती है तो वो एक बीज रूप में रहती है, बीज, अब बीज से जब व्यक्त होता है तो बीज का पहला स्टेज क्या होता है कि अगर किसी बीज को आप पानी में डाल के रखो तो सवेरे तक आपको मिलेगा कि बीज जो है फूल गया थोड़ा सा, अभी उसका ऊपर का जैकेट जो है वो फटा नहीं है, उसमें से स्प्राउट नहीं हुआ है, ऐसा स्टेज है, उसको महत तत्व कहते हैं। महत महतत्व वो इनर्ट है, जड़ है। अगर उसके साथ में चेतन को जोड़ दें तो उसी को हम कहेंगे हिरण्यगर्भ। महतत्व चेतन के साथ अगर उपहित हो जाए तो उसको हम कहेंगे हिरण्यगर्भ। और सूत्र आत्मा, उसका दूसरा नाम भी आपको मिलेगा, सूत्र आत्मा। सूत्र आत्मा, हिरण्यगर्भ, महत्तत्व। एक चीज हुई, नाम भिन्न भिन्न क्यों है? चेतन की उपस्थिति के साथ में, चेतन के साथ में आइडेंटिफिकेशन होने के कारण हिरण्यगर्भ और सूत्र आत्मा कहेंगे, बिना चेतन के उसको जड़ कहेंगे, जड़ कहेंगे तो महत्तत्व कहेंगे। तो इस महत्तत्व से फिर आता है ये सूक्ष्म, उसके बाद आता है अहंकार, टोटल अहंकार आता है। उस अहंकार के बाद अहंकार से निकलता है तन्मात्रा। तो भगवान ने जो अभी आठ चीजों का बात बताई ना, भूमि, आप, अनल, वायु, कम, मना, बुद्धि, मना, ये सब के सब जो है सूक्ष्म रूप से अहंकार से आए। तो महत्तत्व आया कहां से? अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है तो महत्तत्व। महत्तत्व से क्या मिला? अहंकार। अहंकार के बाद क्या मिला? तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब क्या हुआ? सटल एलिमेंट्स। तो सटल एलिमेंट का कारण क्या है? सूक्ष्म पंच महाभूत का कारण क्या हुआ? अहंकार। अहंकार का कारण क्या है? महत्तत्व। महत्तत्व का कारण क्या है? अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति, महत्तत्व, उसके बाद में अहंकार, अहंकार के बाद में तन्मात्रा। तन्मात्रा तो यहां पर जो भगवान बता रहे हैं वो तन्मात्रा की बात बता रहे हैं। अभी ये मिक्स नहीं हुए हैं, अभी इनका पंचीकरण नहीं हुआ है। कैसे पंचीकरण होता है वो तत्वबोध में लिखा है, उसका नियम बताया वहां पर कैसे वो मिलते हैं। जब वो मिल जाते हैं तब उसके बाद में वो स्थूल पंच महाभूत बनते हैं, जो स्थूल पंच महाभूत अभी हम देख रहे हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य है, जो इंद्रिय ग्राह्य है। आशा करते हैं आपको याद रहेगा कैसे प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त होती है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, ये उसके स्टेप से है। अच्छा, उसके बाद भगवान कहते हैं चलो मैंने एक प्रकृति आपको बताई, अपरा प्रकृति। अब जो है आपको हम अपनी दूसरी प्रकृति के बारे में भी आपको बताएंगे। पांचवां श्लोक,
अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम, प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत।
अपरायम जो अभी हमने पिछले श्लोक चौथे श्लोक में देखा, भगवान कहते हैं इसका नाम है अपरा। अभी जो पांच चीजें पंच महाभूत सूक्ष्म रूप की जो बताई, मन, बुद्धि और अहंकार को लेके जो आठ चीजें बताई, भगवान इसका नामकरण करते हैं अपरा इयम। ये अष्टधा प्रकृति अपरा है। अच्छा, इतः तू अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे जो भिन्न है अन्याम, इससे जो दूसरी है प्रकृति मेरी विद्धि, जानो वो क्या है? वो परा प्रकृति है। देखो भगवान ने बता भी दिया कि अष्टधा प्रकृति अपरा है और इसको छोड़कर एक मेरी दूसरी प्रकृति है, उसका नाम परा प्रकृति है। भाई उस क्या है वो? जीव भूताम, ये जीव रूप है, ये जीव रूप है। परा प्रकृति। महाबाहो हे अर्जुन, यया इदम धारयते जगत, और यही जो है जगत का धारण किया हुआ है, सारे जगत को इसने धारण करके रखा हुआ है। जीव भूता जो परा प्रकृति है वही सारे जगत का आधार है। अपरा यम अष्टदा प्रकृति जो पिछले श्लोक में बताया, अब अपरा और परा, तो अपरा वाली निकृष्ट हो गई और परा वाली उत्कृष्ट हो गई। एक लोअर प्रकृति हुई उसको हम निकृष्ट कहेंगे और एक हायर प्रकृति हुई उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे। क्यों आप निकृष्ट कहते हो इसको? भगवान की तो प्रकृति है, एक अपरा है एक परा है, तो भगवान ने जब उसका भाग किया है तो कुछ सोच के किया है। क्या है इसके पीछे राज? इसके पीछे ये राज ये है कि अपरा प्रकृति जड़ है। एक नंबर, अपरा प्रकृति जड़ है, यह मलिन प्रकृति है और इसमें सत्व रजस तमस गुण हैं, और इस जड़ प्रकृति से अगर हम तादात्म्य करते हैं तो उससे बंधन होता है। तो अपरा का प्रकृति की पहली विशेषता हुई ये जड़ है, दूसरी विशेषता हुई ये बांधती है, और तीसरी विशेषता है ये परार्थ है, पर अर्थ दूसरों के लिए है, परार्थ है दूसरों के लिए है। जितनी भी चीजें हैं हमारे पास में पंच महाभूत की बनी हुई है, किसके लिए हैं? बोले दूसरों के लिए हैं, वो अपने लिए नहीं है। जैसे ये हमारा जो है चिन्मय मिशन यमुनोत्री पांच महाभूत से बना हुआ है, किसके लिए है? यमुनोत्री अपने लिए थोड़ी ना कर रहा है, भक्तों के लिए है। ये तो सारी दुनिया पंच महाभूत से बनी हुई है, आपकी गाड़ी किसके लिए है? गाड़ी अपने अपने के लिए होती है, गाड़ी अपने आप तो चलती नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। यहां तक तो ठीक समझ में आ गया, एक स्टेप थोड़ा आगे चले। ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है, किसके लिए है? अब बोल दो भाई, उत्तर दे दो। अपरा प्रकृति है ना, ये अपरा प्रकृति का है तो परार्थ है, ये दूसरों के लिए है। पर हम क्या इसको व्यवहार करते हैं दूसरों के लिए? एकदम नहीं। और ये बांधती है ये भी हमको पता है, ये इनर्ट है जड़ है ये भी हमें पता है। इतः तो अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी एक परा प्रकृति है, यानी ये चेतन प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति जड़ हुई और परा प्रकृति चेतन हुई। तो इस सारी दुनिया के अंदर आपको दो ही चीजें मिलेगी, एक जड़ मिलेगा एक चेतन मिलेगा। जड़ कैसा है? वो बांधता है और परार्थ है, दूसरों के लिए है। अच्छा, परा प्रकृति उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि ये जीव भूत है, यह जीव बनी इसलिए ये उत्कृष्ट है। क्योंकि यह चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है, इसलिए इन कंपैरिजन टू अपरा प्रकृति, परा प्रकृति उत्कृष्ट हो गई क्योंकि वो चेतन रूप है और अपरा प्रकृति जड़ है। ये चेतन रूप क्या है? ये निर्मल है, ये मोक्ष रूप है। अगर इसको आप जान लें, इसको आप समझ लें, इस तक पहुंच जाएं, तो ये आपको मुक्ति दे देगी। चेतन आपको मुक्ति दे देगी। एवं और बड़ी अच्छी बात है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति के लिए काम करती है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति के लिए काम करती है। आपका शरीर जो अपरा प्रकृति से बना हुआ है, आपके भीतर जो चेतन है, आपके भीतर में जो जीव है, उस जीव के लिए ये अपरा प्रकृति से बना हुआ शरीर उसके लिए काम करता है। मालिक कौन हुआ? चेतन प्रकृति मालिक हुई, परा प्रकृति। नौकर कौन हुआ? अपरा प्रकृति नौकर बनी। जीव भूताम क्षेत्रज्ञ रूपाम, शंकराचार्य जी कहते हैं जीव भूताम का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ रूपाम, जो जानती है, जिसको समझ में आता है। और क्षेत्र क्या हुआ? देहादि संघात जो है वो क्षेत्र है। इस शरीर को क्या बोलते हैं हम? इसको एक संघात बोलते हैं, असेंबली। ये असेंबली जो है अपरा प्रकृति है। उस क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र को जानने वाला है, हमारे भीतर जो बैठा हुआ है क्षेत्रज्ञ, जो कि परा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति को जानने वाला है, उस शरीर को जानने वाला है, सारे क्षेत्र को जानने वाला है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये शुद्ध जो है चेतन है, लाइफ स्पार्क जिसको कहते हैं, वो ये है परा प्रकृति, शुद्ध चैतन्य रूप है। देखो जीव भूताम जो है ना, इसका लिटरल मीनिंग तो जीव हो गया, मगर इसका इंडिकेटिव मीनिंग, वाच्यार्थ तो जीव हुआ, लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ इसका शुद्ध चेतन है। आप लोगों को मालूम है जीव की परिभाषा क्या है और उसके भीतर बैठा हुआ साक्षी की परिभाषा क्या है? दोनों ही चेतन है, दोनों ही चेतन है। तो यहां लक्ष्यार्थ जो है शुद्ध चैतन्य है। महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। अच्छा, ये क्या करती है? ये अपरा प्रकृति इसमें घुसकर, इस अपरा प्रकृति में जो है परा प्रकृति घुस जाती है, परा प्रकृति में चेतन घुस जाता है। किसमें घुस जाता है? अपरा प्रकृति में घुस जाता है, और ये जड़ प्रकृति को कार्य में करने के लिए सक्षम कर देता है। जब इस शरीर के अंदर वो जड़ है, हम लोग जानते हैं एक मृत शरीर जो है कुछ नहीं कर सकता है, जड़ है वो, इनर्ट है। मगर जब उसके अंदर चेतन परा प्रकृति जब घुस जाती है, तब ये सारा शरीर काम करने लगता है। सब अंगों के अपने अपने काम है, हाथ पकड़ेगा, आंख देखेगी, कान सुनेंगे, पैर से हम चलेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। अंग अलग अलग हैं, मगर चेतन एक है, चेतन एक है। इलेक्ट्रिसिटी एक है, मगर इक्विपमेंट अगर डिफरेंट लगा दिए जाएं, कहीं पर हीटर हो जाता है, कहीं पर रेफ्रिजरेटर हो जाता है, कहीं पर हवा बन जाती है पंखे की, कहीं पर प्रकाश बन जाता है, तो जैसा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा जो है उसके फंक्शन हो जाते हैं। उसी तरह चेतन जो है हमारे भीतर में है, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियों के सबके अलग अलग फंक्शन है, सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तो ऐसी प्रवेश श्रुति आपने कई बार सुना भी है, तद अनुप्रवास प्राविशत तैतृय उपनिषद में आता है। भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के उसमें घुस गए, इसको हम लोग प्रवेश श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब उपनिषद में ऐसा कहा है कि भगवान घुस गए उसमें। यहां भी यही चीज बताई गई है कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति के अंदर घुस गई। पंचदशी में भी हम लोगों ने पढ़ा है प्राविशत जीव रूपतः, मगर अज्ञान बस जीव क्या सोचता है, अरे जीव तो चेतन है, जीव भूत जो है वो तो चेतन है, मगर अपने को क्या मानता है कि शरीर, शरीर क्या है? अपरा प्रकृति है, जड़ है, जड़ शरीर को अपने को मान लेता है। देखो ये अज्ञान है। जीव है कौन? चेतन स्वरूप है, मगर अपने को अज्ञान अवस्था में क्या मानता है? मैं शरीर हूं। शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है, अपरा प्रकृति है। जीव कैसा है? बोल परा प्रकृति वाला है। तो परा प्रकृति वाला शुद्ध चैतन्य अपने आप को शरीर मान लेता है अज्ञान की अवस्था में। ये हमारी अवस्था है, आप सबकी, हमारी सबकी एक ही अवस्था है, हम अपने आप को एक शरीर मान लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर उसकी जीव की यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने शरीर के साथ में तादाद में किया, अब शरीर अपनी अब मांगे लिस्ट भेजता रहता है आपको, अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए, अब ये चाहिए, एक के बाद एक लिस्ट आती रहती है और सारी जिंदगी हम जो है काम करते रह जाते हैं और शरीर की इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं और वासना बनाते रहते हैं। यही जीव की यात्रा है। जहां आपने तादात्म्य कर लिया शरीर के साथ में, शरीर आपको लिस्ट दे देता है, ये मेरी सूची है, मेरे को ये चीजें चाहिए, ठीक है। जीव है क्या? जानाति इच्छते यतते, जानाति जानना चाहता है, इच्छते उसके अंदर कामनाएं हैं, यतते चेष्टा करता है, यही जीव है। जीव को अगर हम परिभाषा दें तो हम यही कहेंगे ना, जानाति इच्छते यतते, जानाति जानना चाहता है, इच्छते उसके अंदर डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, यतते वो चेष्टा करता है, कर्म करता है, मगर परा प्रकृति चेतन रूप है। तो एक चेतन रूप प्रकृति है, उसका नाम भगवान ने परा प्रकृति कहा, और एक जड़ प्रकृति है जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा, जिसके अंदर आठ चीजें भगवान ने गिना दी, पांच सूक्ष्म महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। ये और भी सूक्ष्म है, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, अहंकार सबसे सूक्ष्म है। इसको सिद्ध करने के लिए मैं अव्यक्त से व्यक्त में आया, महत्तत्व में आया, फिर उसके बाद अहंकार आया, अहंकार के बाद तन्मात्रा आई, इससे पता लगा कि अहंकार जो है तन्मात्रा से भी सूक्ष्म है, और उस तन्मात्रा से मन बुद्धि बने, उस सटल एलिमेंट से मन बुद्धि बने, इसलिए अहंकार जो है मन बुद्धि का भी कारण है। अच्छा, तो प्रकृति को दो भाग ऐसे भी हम करके देख सकते हैं, एक तो दृष्टा है दृक, उसको हम परा प्रकृति कह सकते हैं, और दूसरा दृश्य है सीन, जिसको हम देखते हैं, वो क्या है? अपरा प्रकृति। तो एक सहज रूल है, जो कुछ भी दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, जिसको सूंघ सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, छू सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है? अपरा प्रकृति है। तो कोई भी अगर आपसे प्रश्न कर दे ना किसी भी चीज को लेके, तो आप उसको सीधा ही जो है आंख बंद के करके कह देना, यह परा है। क्यों? परा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परा प्रकृति को, जीव को, उस चेतन को न हम देख सकते हैं, न उसको सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको, न टेस्ट करके बता सकते हैं आत्मा कैसा है, मीठा है कि तीता है, नहीं बता सकते। इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी की सारी परा प्रकृति है। क्या हो गया? आप ऐसे गर्दन हिलाने से हम मान लेंगे? वो सारी की सारी अपरा प्रकृति है, परा नहीं है। आपको अटेंटिव होना होगा, मैं आपके सबके मुंह देख रहा हूं, वो सारी की सारी अपरा प्रकृति है। अच्छा, भगवान और बताने जा रहे हैं, छठवां श्लोक।
एतद् योनीनि भूतानि,
एतद् योनीनि
भूतानि, सर्वानित्युपधारय,
सर्वानित्युपधारय,
अहं कृष्णस्य जगतः,
अहं कृष्णस्य जगतः,
प्रभव प्रलयस्तथा,
प्रभव
प्रलयस्तथा, एतत् योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय, अहं कृष्णस्य जगतः, प्रभव प्रलयस्तथा।
एतत् योनीनि, योनीनि मतलब यहाँ पर जो है दो चीज बताई, ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दो चीज, इन दोनों चीजों को भगवान कहते हैं ये योनि है, ये योम्ब है, किसकी? भूतानि सर्वानि इति उपधारय, उपधारय मतलब ऐसा समझो कि जितने भी जीव हैं, जितने भी भूत हैं, सर्वानि सब इन सब की योनि जो है ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है। तो जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा इन दो चीजों से आया है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, अहम मैं कृष्ण से सारे जगत का प्रभव उत्पत्ति का कारण हूं, प्रलय मेरे में ही सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है, प्रलय भी हो जाता है। अर्थात एक सब सेंटेंस में कहें तो भगवान कहना चाहते हैं कि सारी प्रकृति अपरा प्रकृति या परा प्रकृति से जो कुछ भी बना है उसका मूल कारण मैं हूं, मूल कारण मैं हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं, मेरी दो प्रकृति है। देखो ऐसे समझो, भगवान ऊपर बैठे हैं, उनकी दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति है एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति पहले भगवान ने बताया, परा प्रकृति बाद में बता दिया। अब कहते हैं इस परा और अपरा प्रकृति से सारी दुनिया का सृजन हुआ है, यही उत्पत्ति का कारण है, मैं ही कारण हूं और मेरे में ही सब के सब फिर लय भी हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो एक परा प्रकृति जो है वो चेतन रूप है और अपरा प्रकृति जो है जड़ रूप है। वो किसकी हैं ये दोनों? भगवान की हैं। तो मूल कारण क्या हुआ? भगवान हुआ। अच्छा, अगर मूल कारण भगवान है तो इसका मतलब हो गया कि सारा जगत भगवान खुद बन गए। परा और अपरा प्रकृति का मूल कौन है? मूल भगवान है। परा और अपरा प्रकृति से जो कुछ भी बना जीव बन के फिर भगवान उसमें घुस जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जगत जो है सारा का सारा भगवान कहते हैं। मगर दूसरी पंक्ति में कहते हैं अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि जगत तो है ही नहीं, अरे मेरे कारण ये उत्पन्न होता है, मेरे कारण खत्म हो जाता है, कौन बचा? केवल मैं बचा और कोई है ही नहीं, तो मेरे को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। देखो तो अहम कृष्णस्य, कृष्ण से मतलब समस्त जगत प्रभव प्रलय सता, प्रभव मतलब उत्पत्ति प्रलय। तो भगवान कहते हैं मैं उत्पत्ति कारण हूं, नंबर वन, मैं ही प्रलय कारण हूं, और तीसरा होता है स्थिति कारण, मेरे कारण ही सब कुछ स्थित भी है। तो भगवान से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है, भगवान के ऊपर ही सारा जगत स्थित है और भगवान में ही सारा जगत लय होता है। जैसे देखो घट एक होता है, घट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई, मिट्टी के कारण ही घट स्थित है। जब तक घट के अंदर मिट्टी है तब तक घट है, और जैसे ही घट टूट गया क्या हो गया? फिर मिट्टी हो गया। तो घट की उत्पत्ति मिट्टी से हुई, स्थिति कैसे है? जब तक घट में मिट्टी है तब तक घट स्थित है, अगर घट में से मिट्टी निकाल दें खत्म हो गया घट, और घट अगर टूट जाए फिर भी वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी तरह से भगवान ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। तो ऐसा जो जगत है जिसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है, उस जगत को हम सत्य मान बैठे हैं। देखो आप पानी के अंदर बुदबुदा देखेंगे, उस बुदबुदे की स्थिति कहां है? पानी के कारण है। उत्पत्ति कहां से हुई? पानी के कारण हुई। लय कहां होता है बुदबुदा? पानी में होता है। पानी को छोड़कर अगर हम बुदबुदे को सत्य मान लें तो क्या होगा? हमको लोग ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? हमने जगत को सत्य मान लिया, इसलिए हम लोग सब क्या हैं? ज्ञानी हैं। देखो हम लोगों ने माना है, अपने आप को मान लो अभी अज्ञानी है। हम सब अज्ञानी हैं क्योंकि हमने जगत को सत्य मान लिया। मगर भगवान क्या कहते हैं? माया मात्रमिदम, ये सब माया है, सब माया है। एक दृष्टि से माया कह दिया। कौन सी दृष्टि से? बोले नाम रूप अगर देखोगे तो माया है, नाम रूप देखोगे तो ये सब का सब माया है। और दूसरी जगह क्या बताते हैं? सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। देखो ये दोनों सेंटेंस आते हैं उपनिषद के अंदर, सब कुछ ब्रह्म है। और दूसरी जगह बोलते हैं ये सब माया है। सुनते हैं ना ऐसी बात हम लोग? जब हम कहते हैं कि सब कुछ माया है, इसका मतलब जितने भी नाम रूप हैं वो सब माया हैं। उनका जो आधार है वो भगवान है, वो सब भगवान है सब जगह। इसलिए जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, सबके साथ में जो है सच्चिदानंद लगे हुए हैं। तो सच्चिदानंद की दृष्टि से देखोगे तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। और अगर आप जो है उसके आधार को नहीं देख पाते हो, केवल नाम रूप को देखते हो, तब क्या है? तब माया है, तब माया है। अब जैसे आपने एक सोना ले लो, सोने का अगर एक बिस्कुट है, ठीक है सोना है। अब उसको आप सोनार के पास में ले जाके आपने डिफरेंट किस्म के जो है भिन्न भिन्न किस्म के गहने बना लिए। अब आप उसको सोना नहीं कहते हो, अभी कभी कहते हो अंगूठी है, कभी कहते हो हार है, कभी कहते हो कंगन है, हैं? सोनार ने क्या किया? उसी सोने का एक रूप दे दिया, और रूप देने के बाद में हमने उसका एक नाम दे दिया। उसके व्यवहार के अनुसार हमने उसका नाम दे दिया। कान में पहनेंगे तो भाई ये जो है इयर रिंग हो गया, नाक पे पहनेंगे तो नोज पिन हो गया, गले में पहनेंगे तो हार हो गया, हाथ में पहनेंगे तो कंगन हो गया। ऐसे नाम दे दिए हमने, मगर है क्या वो? है तो सोना ही। तो हम लोग जब जो है किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम नाम रूप देखते हैं, नाम रूप देखते हैं। और उसके अंदर जो है वो नक्काशी बना देते हैं, उसके अंदर में फिर जो है मीना कर देंगे, उसमें पत्थर लगा देंगे। ओ सो ब्यूटीफुल, कितना दाम है? इतना दाम है। अगर कोई सोनार जाए वहां पर दुकान में तो वो क्या देखेगा? कितना सोना है भाई ये बताओ पहले, इसमें आपने ये हार बना दिया, जुड़वा हार बना दिया है, और इसका वजन आप बताते हो 100 ग्राम है। वो 100 ग्राम में सोना कितना है ये बताओ? वो बोलेगा 10 ग्राम सोना है बाबू। और आपसे दाम ले रहा है 100 ग्राम का, देखो ये चीजें पत्थर लगा दिया, ये थोड़ा रंग लगा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करके आपसे ले लेते हैं। तो जो जानकार आदमी है वो क्या देखता है? उन इतने आभूषणों में वो सोना देखता है। और जो अज्ञानी है वो क्या देखता है? वो नाम रूप में फंस जाता है। आह कितना सुंदर डिजाइन है ये, ऐसा कभी आगे नहीं देखा, ये लेटेस्ट डिजाइन है। आजकल झुमके यहां पहन के यहां तक आते हैं। आज टीवी सीरियल में आप देखो, हिंदी सीरियल में यहां से लेकर हमको लगता है कहीं ये कट के निकल ना जाएगी। इतने भारी भारी पहनते हैं। अच्छा तो एक शब्द और आपको हम देते हैं, भगवान इस सारे जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान जो है इस सारे जगत का अभिन्न, नॉट डिफरेंट, निमित्त इंस्ट्रूमेंटल कॉज, उपादान मेटीरियल कॉज। हम कह सकते हैं ना ऐसा? सबसे ऊपर भगवान है, भगवान की दो प्रकृति हुई परा अपरा। इस परा अपरा प्रकृति ये योनि बन गई। किसकी योनि बन गई? सब भूतों के लिए, जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब की बन गई। तो आदि में कौन बैठा हुआ है? भगवान है। इसलिए भगवान अभिन्न, उसको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। निमित्त एंड उपादान कारण बन गए, तो भगवान को हम कहेंगे अभिन्न निमित्त उपादान कारण। सारे जगत का भगवान जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अच्छा भगवान कहते हैं, बता देता हूँ आपको एक चीज़ और, मेरा कोई कंट्रोलर नहीं है, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। हाँ तो ऐसा नहीं समझना कि भाई ठीक है परा प्रकृति या परा प्रकृति कहाँ से आई, माया से आई, माया का पति कौन है, मायापति है भगवान है, भगवान का बाप कौन है बताओ। अब भगवान कहते हैं मेरे ऊपर और कोई नहीं है। सातवां
मत्त परतरम नान्यत,
मत्त परतरम नान्यत
किंचिदस्ति धनंजय,
किंचिदस्ति धनंजय
मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव,
सूत्रे मणिगणाइव
मत्त परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव।
मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हो धनंजय मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मेरे से परम, मेरे से सुपीरियर, मेरे से बेटर, मेरे से हायर और कोई नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, और कोई नहीं है, यही है सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा वही लिमिट है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। अच्छा और मुझको छोड़कर और जगत में है भी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि मैं ही जगत का उत्पत्ति स्थिति और लय कारण हूं। सब सारा जगत तो है किससे आया, मेरे से उत्पत्ति हुआ, मेरे में स्थित है और मेरे में ही लय हो जाता है, इसलिए इसलिए मुझको छोड़कर दूसरा कुछ इस जगत में है ही नहीं, न अन्यत किंचित अस्ति। देखो हर आभूषण में सोने के छोड़कर और दूसरा कोई नहीं है। अगर अगर सोना अगर बोले कि जिस दुकान में जितने भी आभूषण हैं आप देख रहे हैं, आप तो देख रहे हो नाम रूप, सच अगर ये पूछो तो मेरे को छोड़ के सोने को छोड़ के इस दुकान में क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोने का बना हुआ है, आभूषण सारे बने हुए हैं। तो सारा जगत किससे बना हुआ है, परापरा प्रकृति से बना हुआ है, परापरा प्रकृति किससे आई, भगवान से आई, इसलिए भगवान से ही सारा जगत बना, उसी में स्थित है और उसी में लय होता है, इसलिए सारा का सारा जगत क्या है, भगवान है और कुछ नहीं है, न अन्यत किंचित अस्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा मुझसे परतरम याने कोई दूसरा कारण इस जगत का नहीं है, मैं ही कारण हूं। आप इसे सोचो कि भाई आपका कौन कारण, नहीं और कोई कारण नहीं है, अल्टीमेट कॉज कौन है, अल्टीमेट कारण मैं ही हूं। अच्छा तो सत्य क्या हुआ इस जगत के अंदर, तो सत्य इस जगत के अंदर जो इस जगत का आधार है वो सत्य है, और सारा जगत हम मिथ्या कहते हैं। जगत मतलब क्या, नाम रूप, नाम रूप मिथ्या है, हर सोने के आभूषण के अंदर नाम रूप मिथ्या है, सत्य क्या है, सोना सत्य है, सोना सत्य है। तो इस जगत के अंदर सत्य क्या है, इसका आधार जो है वो सत्य है, नाम रूप जो है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कहा। बुदबुदा घट रज्जू पर सर्प केवल दिखाई देते हैं, सारे के सारे मिथ्या हैं, सारे के सारे मिथ्या हैं। या पानी का हमने अभी उदाहरण आपको बुदबुदे का दिया, पानी से ही बुदबुदा बनता है, उसी पर स्थित है और उसी में लय होता है। तो बुदबुदे और पानी का अगर रिलेशन देखा जाए तो बुदबुदा है क्या, पानी है और तो कुछ नहीं है बुदबुदा, उसमें थोड़ी सी हवा भर गई और वो बुदबुदा बन गया, हवा निकल गई फिर पानी हो गया। बुदबुदा घट, घट मतलब क्ले पॉट, क्ले पॉट कैसे बना, क्ले से बना, उसी में स्थित है, उसी में लय हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं रज्जू और सर्प, रज्जू और सर्प मगर रज्जु सर्प और इन दो एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा तर्क है। रज्जु कभी सर्प नहीं बनती, मिट्टी से घट बन सकता है, पानी से बुदबुद बन सकता है, मगर रज्जु में कोई बदलाव नहीं आता है। रज्जु के ऊपर सर्प जो दिखाई पड़ता है वो केवल आभास मात्र है। ये सारा जगत भी आभास मात्र ही है, आभास मात्र है। मगर भगवान आप जब इतना कहते हो कि आप ही हो सब जगह, ऐसा है ना, इतनी देर से आप बता रहे हो कि मेरे से ही सब आ रहा है, मैं ही हूं, मेरे को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, मगर आप तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ते हो। दिखाई पड़ रहे हैं भगवान? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मई सर्वम, ये सारी की सारी चीजें ऐसे समझो कि एक माला है, माला के अंदर एक सूता होता है और सूते के अंदर हम मणि लगा देते हैं। अब जैसे तुलसी की माला हुई या रुद्राक्ष की माला हुई, या आप लोग कई किस्म की माला पहनते हैं, तुलसी की माला हो गई, तो माला के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो भीतर में सूता होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरे सब बीड्स होते हैं, मनी होती हैं, मनके होते हैं, उन सबको पकड़ के किसने रखा है, सूते ने पकड़ के रखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं उस सूते की तरह हूं। अच्छा, जब माला जब बन जाती है तो आपको क्या माला के अंदर सूता दिखाई पड़ता है? सूता नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं माला में सूत की तरह उपस्थित हूं। अच्छा, सूत्र की महिमा देखिए, सूते की महिमा देखो, विचार करने से इतनी चीजें निकलती हैं। सूता माला को सपोर्ट देता है मगर दिखता नहीं है। अगर सूता ना रहे तो माला नहीं बनेगी। माला को सपोर्ट देता है मगर दिखाई नहीं पड़ता है। मोती के भिन्न भिन्न रंग हो सकते हैं मगर सूता का रंग एक होता है। उसके मोतियों के रंग दूसरे हो सकते हैं, साइज अलग हो सकता है, रूप रंग डिफरेंट हो सकते हैं, मगर सूता एक रंग का होता है। मोती आकर्षणीय लगते हैं, मोती भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर सूता सबको आश्रय देता है। सपोर्ट कौन कर रहा है सबको? सूता कर रहा है। अच्छा, मोती एवं सूता भिन्न भिन्न है, दोनों एक चीज नहीं है। मोती और सूता जो है भिन्न भिन्न है। सूता मोती से अटैच नहीं है, डिटैच्ड है। कभी ख्याल किया आपने? सूता जो है मोती के साथ में डिटैच्ड है, कभी अटैच नहीं होता है। मोती उसके अंदर घूमते रहेंगे, क्योंकि आप पिरोते हैं ना उसके अंदर, तो उसमें प्ले करते रहते हैं। मोती अनेक हो सकते हैं मगर सूता एक होता है, एक होता है। सूता का स्वरूप एक सा है, मोती के स्वरूप अनन्य अलग अलग हो सकते हैं। आपने एक माला के अंदर एक जो है मोती दिया, पर्ल दे दिया, उसके बाद एक आपने गोल्ड का मोती दे दिया, एक सिल्वर का दे दिया, एक फिर और कोई मोती दे दिया, डिफरेंट किस्म के दे दिए, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनका स्वरूप भिन्न हो सकता है, मगर सूता जो है वो एक रूप है। उसी तरह से सारे जगत का आधार एक रूप है, मगर उसके ऊपर में जो जितने भी नाम रूप हैं वो सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। शंकराचार्य जी ने एक दूसरा उदाहरण दिया है, दीर्घ तंतु सुपटवत, जैसे तंतु सूते से कपड़ा बनता है, सूते से कपड़ा बनता है, है तो सूता ही। हम लोगों ने जितने किस्म के कपड़े पहन के रखे हुए हैं, जो भी रंग हो, इन सब का आधार कौन है? सूता है। सब सफेद सूता था, उसके बाद में हमने उसको कपड़े बनाए, कपड़े बना के उसके बाद अपने हिसाब से डिजाइन से, अपने नक्शे के हिसाब से, अपने शरीर की साइज के हिसाब से हमने कपड़े काटे, उसको सिलाई कर दिए, फिर उसमें रंग चढ़ा दिया। मगर असल में है क्या? वो है तो सूता। बेस में क्या है? सूता ही है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, उसी तरह भगवान जगत बने, प्रभव प्रलय स्थिति कारण माला से दिखाया जा रहा है। मत्तः परम किंचित नास्तिति नास्ति स्थिति कारण, मेरे को छोड़कर और दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके कारण सारा जगत स्थित है। तो अब क्या हमको समझना है, मैं सत्य हूं, मैं ही जगत हूं, और मुझको छोड़कर अगर अन्य दिखाई पड़ रहा है तो वो मिथ्या है। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जगत हूं, और मुझको छोड़कर अन्य कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो मिथ्या है। सोनार की दुकान में सब कुछ सोना ही सोना है। अगर सोने को छोड़कर आपको अन्य कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो क्या है, वो मिथ्या है। तो नाम रूप क्या है, वो सारे के सारे मिथ्या है। असल में क्या है, सोना है। सब सब आभूषणों में सोना ही सोना है। आत्मबोध में कहा जगत विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्म न अन्यत न किंचन। ब्रह्म जगत से भिन्न ब्रह्मन है, मगर ब्रह्मन अन्यत न किंचन, ब्रह्मन छोड़कर और कुछ है ही नहीं। हम तो केवल नाम रूप देख रहे हैं, नाम रूप ब्रह्मन नहीं है, नाम रूप ब्रह्मन नहीं है। अगर अन्य कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। सोने के आभूषण के अंदर आभूषण सारे मिथ्या हैं, सोना जो है वो सत्य है। चाहे वो नाक छवि हो, चाहे वो कान का इयर रिंग हो, चाहे बैंगल हो, चाहे वो माला हो, जो कुछ भी हो, हर चीज जो सोने से बनी हुई है उसमें सोना ही सत्य है। मगर हम उसको जब कंगन कहते हैं, जब उसको हार कहते हैं, वो मिथ्या है। असल में है क्या, वो सबका सब सोना ही है। अगर फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे को देखना चाहते हो तो यहां पर जो परा प्रकृति जो कहा गया है जीव भूता, वो मैं हूं। 13वें अध्याय में जो क्षेत्रज्ञ शब्द यूज किया गया है मेरे लिए, वो मैं हूं। उसके बाद में चैप्टर 13 के अंदर पुरुष शब्द जो व्यवहार किया गया है, वो मैं ही हूं। मैं वांसो जीवलो के 15वें अध्याय में जो शब्द आपने यूज किया, वो भी मैं ही हूं। एक ही है, केवल मैंने नाम अलग अलग दे दिए, वो मैं ही हूं। भगवान जरा और थोड़ा सा हमें बताइए ना, हम आंख खोलकर कैसे आपको देखें सब जगह। तो भगवान 8 से लेके 12 श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12 पांच श्लोक के अंदर नमूने के हिसाब, सैंपल के हिसाब से हमको बताएंगे आप आंख खोलकर कैसे देख सकते हो। बाहर भी हमको दिखाई पड़ा, आपको देखना है वो देखो। फिर इसका विस्तार भगवान करेंगे विभूति योग में, वहां पर बहुत से एग्जाम्पल देंगे, 70, 72, 75 एग्जाम्पल दे देंगे भगवान कि अगर आंख खोलकर हमको देखना है तो देखो ऐसे ऐसे देखो हम नजर आएंगे। तो अगले 5 श्लोक हम अगली कक्षा में देखेंगे कैसे आंख खोलकर हम भगवान को बाहर देख पाएंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।